ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। गृहमंत्री रमेश लेखक ने पूर्व राजा के समर्थकों द्वारा की गई तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा, घटना में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व राजा के समर्थकों द्वारा किया गया तोड़फोड़, आगजनी लगायत अपराध माफी के लायक नहीं है। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड का कथन। कल तीनकुने लगायत क्षेत्रों में की गई तोड़फोड़ और गंदगी के लिए काठमांडू महानगर पालिका ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पर लगाया 7,93,000 रूपये का जुर्माना। और म्यांमार में आए कल के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 1600 से अधिक। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री रमेश लेखक ने पूर्व राजा के समर्थकों द्वारा कल की गई तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट वाले क्षेत्रों काठमांडू के तीनकुने, कोटेश्वर लगायत का निरीक्षण किया है। गृहमंत्री लेखक समेत गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाड़ी, गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उन्होंने तीनकुने स्थित निजी घर, कांतिपुर टेलीविजन कार्यालय, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक के कार्यालय, जड़ी बूटी स्थित जड़ी बूटी उत्पादन तथा प्रशोधन कंपनी लिमिटेड नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी और नेकपा माओवादी केन्द्र के कार्यालयों और कोटेश्वर स्थित भाट बटेनी सुपर मार्केट लगायत का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संचार गृहों पर हुए हमलों को निंदनीय बताते हुए गृहमंत्री लेखक ने कहा कि घटना में शामिल लोग चाहे कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व राजा के समर्थकों द्वारा कल काठमांडू के तीनकुने में किए गए प्रदर्शन को उत्तेजित बनाने में शामिल होने के आरोप में धर्मगुरु के तौर पर पहचाने जाने वाले पुष्कर खतिवड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें ललितपुर के इमाडोल से गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी जिला प्रहरी परिसर ललितपुर के प्रमुख श्याम कृष्ण अधिकारी ने दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजावादियों के प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले दुर्गा परसाई फरार है और उन्हें पुलिस ढूंढ रही है। काठमांडू जिला प्रहरी परिसर के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसद धवल शमशेर जबड़ा को फौजदारी अभियोग में गिरफ्तार किए होने की जानकारी संसद सचिवालय को दी गई है। ये जानकारी संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी ने दी। काठमांडू महानगर पालिका ने कल काठमांडू के तीनकुने लगायत क्षेत्रों में राजावादियों के प्रदर्शन के दौरान पेड़ पौधे, रेलिंग लगायत की गई तोड़फोड़, कचरा फैलाने लगायत का चार्ज लगाते हुए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पर 7,93,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। महानगर प्रहरी बल ने पूर्व राजा शाह के समर्थन में प्रदर्शन किए गए तीनकुने लगायत क्षेत्रों का आज निरीक्षण और क्षति मूल्यांकन करते हुए जुर्माना लगाए होने की जानकारी दी है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ और नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघ ने कल तीनकुने लगायत क्षेत्रों में की गई लूटपाट व हिंसक गतिविधियों की निंदा करते हुए उसे हुई क्षति की पूर्ति करने की मांग की है। दोनों ही संस्थाओं ने अलग अलग बयान जारी कर दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग भी की है। पूर्व राजा के समर्थकों ने हिंसात्मक आंदोलन की चपेट में मारे गए संचारकर्मी सुरेश रजक के प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। पत्रकार रजक की दुखद मृत्यु की सच्चाई पता लगाकर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग के साथ महासंघ ने आज माइतीगढ़ में प्रदर्शन भी किया। ज्ञात हो कि कल पूर्व राजा के समर्थकों द्वारा काठमांडू के तीनकुने स्थित एक निजी भवन में आगजनी की थी। उसी भवन के ऊपर से विरोध प्रदर्शन का वीडियो ले रहे एबी न्यूज टेलीविजन के कैमरा पर्सन रजक उस आग में झुलस गए और उनकी मौत हो गई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कल तीनकुने क्षेत्र में हुए घटना की जांच करके दोषी को कार्यवाही के दायरा में लाने के लिए सरकार से मांग की है। नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्र के कार्यालय में हुए क्षति के बारे में आज सुबह निरीक्षण करने के बाद हुए समाजवादी मोर्चा नेपाल के बैठक में उन्होंने ये बात कही। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि पूर्व राजा के समर्थकों द्वारा किए गए तोड़फोड़ और आगजनी की घटना किसी भी हालात में क्षम्य नहीं होगा। आज प्रेस सेंटर नेपाल के पांचवें राष्ट्रीय महाधिवेशन का काठमांडू में उद्घाटन के दौरान अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि पूर्व राजा के समर्थकों ने स्वतंत्र प्रेस को आक्रमण का निशाना बनाया है, इसलिए पूरे संचार जगत एकताबद्ध होना चाहिए। अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि लंबे संघर्ष से स्थापित संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में प्रेस का भूमिका और भी सशक्त होना चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति तथा पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कहा कि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम रहेगी। आज लुम्बिनी में आयोजित नेपाली लेखक संघ के 8वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में सभापति देउवा ने कहा कि नेपाली जनता संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पक्ष में है, इसलिए वर्तमान व्यवस्था ही कायम रहेगी। चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन आज काठमांडू घाटी में परंपरागत घोड़े यात्रा पर्व मनाया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने घोड़े यात्रा के अवसर पर नेपाली सेना द्वारा आज टूड़ी खेल में आयोजित समारोह का अवलोकन किया। समारोह में घोड़ा दौड़, घोड़ा जंप, अश्वकला, मोटरसाइकिल के करतब, शारीरिक व्यायाम, युद्ध कला लगायत विभिन्न रोचक कलाओं का प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन में उत्कृष्ट होने वालों को राष्ट्रपति पौड़ेल ने पुरस्कार प्रदान किया। समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमरे, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, उप प्रधानमंत्री, मंत्री, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग के प्रमुख एवं प्रतिनिधि लगायत उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी थे। कंचनजंघा क्षेत्र में पड़ने वाला 6433 मीटर ऊंचा सारफू चार हिमाल पर पहली बार इंसान के कदम पड़े हैं। चिली के पर्वतारोही हर्नान डेविड लियल के नेतृत्व में आई टोली ने पहली बार बीते मंगलवार उस हिमाल का सफल आरोहण किया। ये जानकारी आरोहण दल की सदस्य पूर्णिमा श्रेष्ठ ने दी। कैलाली की टीकापुर नगरपालिका में पाइप लाइन मार्फत घर घर में पहुंचे बायोगैस प्लांट का विद्युत लाइन काटे जाने से गैस प्लांट उपयोग विहीन हो गया है। नगरपालिका 5 स्थित सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन किए गए क्षेत्र में निर्माण किए गए बायोगैस प्लांट का विद्युत महसूल नहीं देने के कारण विद्युत लाइन काट दिए जाने के बाद 55 घरों में गैस वितरण का काम भी बंद हो गया है। ये जानकारी सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापन तथा प्रवर्धन समिति के अध्यक्ष लोक बहादुर बुढ़ा छेत्री ने दी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार के मिलिट्री काउंसिल ने बताया है कि कल शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1644 हो गई है। सैन्य नेताओं ने बताया है कि भूकंप से घायलों का आंकड़ा भी बढ़कर 3408 पहुंच गया है और 139 लोग अभी भी लापता है। इससे पहले म्यांमार के सैन्य शासन प्रमुख मीन आंग हेलियंग ने कहा था कि मृतकों और घायलों की संख्या और भी बढ़ सकती है। भूकंप केंद्र से सबसे नजदीकी शहर मांडले में ही 694 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी नेपिडा में 94 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। इस भूकंप के झटके पड़ोसी देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए थे। थाईलैंड में भूकंप के कारण 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 मजदूर लापता है। भूकंप के झटकों से सैकड़ों मील दूर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई थी। इससे अभी भी कई मजदूर के फंसे होने की आशंका है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री रमेश लेखक ने पूर्व राजा के समर्थकों द्वारा कल की गई तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा, घटना में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व राजा के समर्थकों द्वारा किया गया तोड़फोड़, आगजनी लगायत अपराध माफी के लायक नहीं है। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड का कथन। कल तीनकुने लगायत क्षेत्रों में की गई तोड़फोड़ और गंदगी के लिए काठमांडू महानगर पालिका ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पर लगाया 7,93,000 रूपये का जुर्माना। और म्यांमार में आए कल के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 1600 से अधिक। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।